Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda
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 Jaya Advaita Chandra Jaya सामान्यतया अत्यंत अशुद्ध माने जाते हैं। यदि कोई इन्हें छू भी ले तो उसे तुरंत स्नान करना चाहिए, यही वैदिक आदेश है। फिर भी वेदों का यह भी कथन है कि पशु के अस्थि होने पर भी, शंख तथा पशु के विष्ठा होने पर भी गोबर अत्यंत पवित्र है। यद्यपि ऐसे कथन परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं, फिर भी हम शुद्धि वाक्य मानकर शंख तथा गोबर को शुद्ध तथा पवित्र होने के रूप में स्वीकार करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधश ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य
मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांशं श्रीरूपां साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतां सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त नमस्ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौरभक्तवृन्द कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो चैतन्य चरितामृत का ये जो अध्याय है जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी की यात्रा करते हैं और किस प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार करते हैं, तो वास्तव में चैतन्य चरितामृत हम जैसे श्रील प्रभुपाद ने कहा ये PhD स्टडी है। तो ये जो चैतन्य चरितामृत या गौर लीला है गौर कथा है जिसका वर्णन करना बहुत ही कठिन विषय है या कठिन सब्जेक्ट है। कई बार हम कृष्ण भावना में आने के बाद हमें भूल जाते हैं कि वास्तव में मैं अपनी शुद्धि के लिए यहाँ पहुँचा हूँ और कई साल बिताने के बाद कई दिन गुजरने के बाद कृष्ण भावना के जो हरे कार्यकलाप हैं उसको हम बहुत सस्ता लेने लगते हैं और धीरे धीरे ये एटीट्यूड हमें डेवलप होता है कि वास्तव में कृष्ण भावना के जो कार्यकलाप हैं वो मेरे बाएँ हाथ का खेल है। तो धीरे धीरे हम जो शुद्ध होने की जो भावना है जिस प्रकार से अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण आप परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान आप परम पवित्र होए तो आपका एसोसिएशन या आपका संग प्राप्त करने के लिए मुझे भी पवित्र होना होगा। तो लेकिन हम कृष्ण भावना में असावधान होते हैं और जिसके कारण कृष्ण भावना रूपी जो अमूल्य रत्न है जिसको हम अपने जीवन से खो बैठते हैं। एक बार एक रिपोर्टर ने श्रील प्रभुपाद से पूछा कि आप बताइए कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है कृष्ण भावना में, आपका ये जो आंदोलन पूरे विश्व में आपने खड़ा किया है चारों दिशाओं में आग की तरह फैल रहा है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा बिकमिंग कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भावना भावित बनना ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। फिर एक बार रिपोर्टर ने पूछा कि आपकी सबसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिस क्या है आपके इस आंदोलन में, तो प्रभुपाद ने कहा कि सब कुछ इस आंदोलन में क्या है महत्वपूर्ण है, यहाँ की हर चीज व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित बनाने का सामर्थ्य रखती है। तो मैं सोच रहा था कई बार क्लास से पहले कहते कि मैं अपनी शुद्धि के लिए बोल रहा हूँ लेकिन वास्तव में ऐसी कोई भावना है नहीं। हाँ उस भावना आना वो वास्तव में बहुत ऊंची अवस्था है। तो ये जो चैतन्य चरितामृत है ये कोई सर्वसामान्य ग्रंथ नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहा करते थे जब उनको कलकत्ता में यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए बुलाया गया चैतन्य चरितामृत पर उनको सिखाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि ये चैतन्य चरितामृत सर्वसामान्य व्यक्तियों का विषय नहीं है। चैतन्य चरितामृत तो वास्तव में
बहुत उन्नत भक्तों का ये सब्जेक्ट मैटर है जो चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानकारी हमें मिलती है। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि कई बार हम सोचते हैं कि किस प्रकार से शास्त्रों को आचरण में लाया जाए, तो चैतन्य चरितामृत क्या वस्तु है? फिलॉसफी इन एक्शन। फिलॉसफी को एक्शन में कैसे उतारा जाए, ये चैतन्य महाप्रभु का ये अमृतमय चरित्र है। और ये चैतन्य महाप्रभु का अमृतमय चरित्र को श्रवण करना एक भक्त के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप में जब वो निवास कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने सोचा कि मुझे संन्यास ग्रहण करना है। तो संन्यास की जो रात्रि थी, जिसका वर्णन चैतन्य मंगल में लोचनदास ठाकुर ने किया है, विष्णु प्रिया को ये चीज बताते हैं। और दूसरे दिन जब चैतन्य महाप्रभु सुबह सुबह जल्दी उठते हैं और निकलने लगते हैं अपने घर से बाहर, तो घर के दरवाजे में आते हैं तो देखते हैं कि सची माता वहां बैठी हैं। और कैसे बैठी हैं? एक स्टैचू के भांति, एक मूर्ति के समान, और उनके आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। और महाप्रभु श्री चैतन्य निमाय पंडित थे, निमाय पंडित आते हैं और अपनी माता को प्रणाम करते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं और निकल पड़ते हैं। किस चीज के लिए? संन्यास ग्रहण करने के लिए, क्योंकि वो केशव भारती से पहले भी मिले थे। और संन्यास ग्रहण करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु कटवा की ओर पदार्पण करते हैं, गंगा में तैरकर अर्ली मॉर्निंग गंगा को पार करते हैं और दौड़ने लगते हैं। दौड़ते दौड़ते केशव भारती की जो कुटिया है कटवा में, वहां पहुंचते हैं। और वहां पहुंचकर उनको कहते हैं कि आप मुझे संन्यास प्रदान कीजिए। तो केशव भारती ने देखा कि अरे इतना महान युवक है, इसके जो बाल है वो सुवर्ण के भांति है और सबके आकर्षण का केंद्र है, नवदीप की आत्मा है। और अभी अभी तो इसका विवाह हुआ है और इसके घर में इसके पीछे तो अभी एक माता है जो बूढ़ी है, तो कैसे मैं इसको संन्यास प्रदान करूंगा? केशव भारती ने कहा कि मैं संन्यास प्रदान नहीं करूंगा, तुम वापस चले जाओ, अपनी माता से परमिशन लेकर आओ। तो महाप्रभु तो पागल थे, है ना, उन्होंने पहले ही ईश्वरपुरी ने कहा था, जब उन्होंने हरि नाम स्वीकारा तो महाप्रभु ने कहा किवा मंत्र दिला गोसाई किवा तार बल जपिते जपिते मंत्र करे न पागल। कि हे गोसाई, आपने कौन सा महामंत्र दिया है, ये कौन सा नाम मुझे प्रदान किया है कि जिसका श्रवण करने मात्र से, जिसका उच्चारण करने मात्र से मैं पागल हो रहा हूं। और वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के लिए पागल थे। और जब संन्यास लेने के लिए वो कुछ भी कर सकते थे, तो उन्होंने कहा परमिशन लो। तो निमाय पंडित वापस दौड़ने लगे नवदीप की ओर कि अभी जाता हूं, अपनी माता से परमिशन लेकर आता हूं। और तो केशव भारती ने देखा रे तो बहुत दृढ़ है, भजते माम दृढ़ व्रता, ये बहुत दृढ़ है, संन्यास लेना लेने के लिए बहुत तत्पर है, बहुत ईगर है, उत्साहित है। और फिर चैतन्य महाप्रभु को रोकते हैं, निमाय को रोकते हैं और केशव भारती उनको संन्यास प्रदान करते हैं। जब उनको संन्यास प्रदान किया तो केशव भारती सोचते हैं कि ये विशेष व्यक्तित्व है, इनका नामकरण क्या करना चाहिए। हाँ, तो वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवतम में लिखते हैं, वो कहते हैं जत जगते रतु में कृष्ण बोलाया कराइला चैतन्य कीर्तन प्रकाशिया। उन्होंने सोचा आपका नाम मैं क्या रख रहा हूं, क्योंकि जत जगते रतु में कृष्ण बोलाया, आप ऐसे महापुरुष हो या ऐसे परम भगवान हो कि सारे जगत को आप कृष्ण नाम का उच्चारण करवाने का सामर्थ्य रखते हो, सारे जीवों के जिह्वा पर कृष्ण नाम प्रदान करने का सामर्थ्य रखते हो। कराएला चैतन्य कीर्तन प्रकाशिया। और वास्तव में चैतन्य महाप्रभु का नाम केशव भारती श्री कृष्ण चैतन्य रखते हैं। जते तुमार नाम श्री कृष्ण चैतन्य सर्वलोक तो महते जाते है न धन्या। तो इसलिए मैं तुम्हारा नाम श्री कृष्ण चैतन्य रखता हूँ, क्योंकि तुम सारे जगत के जो जीव हैं उनके जीवा में कृष्ण नाम का उच्चारण करवाने का सामर्थ्य रखते हो, या सबकी चेतना में कृष्ण प्रदान करने का आप सामर्थ्य रखते हो, या सबकी चेतना में अब कृष्ण भावना जागृत करोगे, इसलिए आपका नाम क्या है? श्री कृष्ण चैतन्य। तो वास्तव में जो चैतन्य चरित अमृत है, श्री चैतन्य महाप्रभु का अमृतमय चरित्र है। हाँ, श्री श्री का मतलब है, आचार्यगण कहते हैं श्रीमती राधिका। तो जो चैतन्य महाप्रभु है, श्रीमती राधा रानी का जो अंग कांति है और उसकी जो भावना है उसको धारण करते हैं, और अपना जो ये अमृतमय चरित्र है हाँ वो प्रदान करते हैं सारे जगत को चलने के लिए। तो महाप्रभु के ऊपर तो कई सारे ग्रंथों की रचना अलग अलग आचार्यों ने की है, और वास्तव में इन रचनाओं के पीछे क्या है? केवल एक ही उद्देश्य है, श्री चैतन्य महाप्रभु के अमृतमय चरित्र का आस्वादन करना, या चैतन्य महाप्रभु के अमृतमय चरित्र का श्रवण करना। हाँ, चैतन्य चरितामृत का जन्म इसलिए हुआ है, किसलिए हुआ है? वृंदावन के जो निवासी थे हरिदास पंडित आदि, जो गोविंद देव मंदिर में निवास करते थे और सदैव चैतन्य महाप्रभु का जो चैतन्य भागवत है उससे महाप्रभु की लीलाओं को नित्य रूप से श्रवण किया करते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की जो चैतन्य भागवत की लीलाएं हैं, जिनका वर्णन वृंदावन दास ठाकुर ने किया, वो नित्यानंद के आवेश में नित्यानंद प्रभु की लीलाओं का महिमाओं का वर्णन उन्होंने इतना अधिक किया कि महाप्रभु की जो शेष लीला है, चैतन्य महाप्रभु की जो जगन्नाथपुरी की लीलाएं हैं उनका वर्णन करना वो भूल गए, या प्रकार या इस एक प्रकार से रह गया। और वो उनके अंदर ये जो उत्सुकता है श्रवण करने की, जो लालसा है, वो बहुत अधिक बढ़ गई। किसके बारे में? श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में, क्योंकि श्रवण करना ये आध्यात्मिक जीवन का फाउंडेशन है। क्योंकि हम अपने जीवन में भक्ति रूपी महल खड़े करने जा रहे हैं, लेकिन उसकी नींव क्या है? श्रवणम है। तो जितना अधिक हमारा श्रवण गहरा होगा, उतना ही अधिक हमारा ये जो भगवत भक्ति का महल है वो बहुत विशाल या सुंदर हो सकता है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु भी अपने जीवन से श्रवण करने की महिमा की शिक्षा प्रदान करते हैं जब वो जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं। लेकिन ऐसे जो वृंदावन के भक्त थे, तो उन्होंने सोचा कि कब वो दिन आएगा जब हम चैतन्य महाप्रभु की जो जगन्नाथपुरी की लीलाएं हैं उनको श्रवण करेंगे। तो उस समय सबने, हाँ, जो कृष्णदास कविराज हैं, कृष्णदास कविराज को निवेदन किया, कृष्णदास कविराज को प्रार्थना की कि आप वास्तव में चैतन्य महाप्रभु के दिव्य चरित्र का वर्णन करने का सामर्थ्य रखते हैं, आप चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों को सारे जगत को प्रदान कर सकते हैं। तो ऐसे कृष्णदास कविराज ने सारे वैष्णवों की कृपा को स्वीकार करते हुए, मदन मोहन की कृपा को स्वीकार करते हुए चैतन्य चरितामृत का संकलन किया। और इसलिए चैतन्य चरितामृत पर वर्णन करना या चैतन्य चरितामृत पर बोलना, उसके लिए अधिकार की आवश्यकता है। स्वयं कृष्णदास कविराज उस अधिकार का वर्णन अपने ग्रंथ में करते हैं। वो कहते हैं कि महाप्रभु का चरित्र, हमें लगता है कि चैतन्य महाप्रभु बहुत सरल है, बहुत वदान्याय है, लेकिन उसके साथ साथ चैतन्य महाप्रभु को इतना चीप नहीं लेना चाहिए हमें। वो कहते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य लीला अद्भुत चरित, ब्रह्मा शिव शेष जार नाह पाह अंत। वो कहते हैं कि महाप्रभु का जो अद्भुत चरित्र है ये इतना डीप है, इतना गंभीर है कि जो ब्रह्मा है शिव आदि है वो भी उसका अंत नहीं प्राप्त कर पाते। तो कौन इस महाप्रभु के चरित्र को समझ सकता है? कौन चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों को अपने हृदय में धारण कर सकता है? तो कृष्णदास कविराज कहते हैं, निगुण चैतन्य लीला बुझिते कार शक्ति, से बुझे गौर चंद्र जाड़ दृढ़ भक्ति। तो महाप्रभु की लीलाएं बहुत अधिक निगुण है, रहस्यमयी है। तो कौन व्यक्ति है जिसके अंदर ये शक्ति है जो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को समझ सकता है? तो कृष्णदास कविराज कहते हैं, से बुझे, वही व्यक्ति जान सकता है जिस व्यक्ति की वास्तव में गौर चंद्र हय दृढ़ भक्ति। जिस व्यक्ति की भक्ति चैतन्य महाप्रभु के प्रति दृढ़ है, इसलिए वो आगे कहते हैं कृष्ण लीला गौर लीला से करे वर्णन गौर पाद पद्मजाल हय प्राणधान। तो कृष्ण लीला या गौर लीला का वर्णन वास्तव में वही व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति ने अपने जीवन का जो प्राण धन है वो चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण को बनाया है। इस प्रकार से इस अधिकार का वर्णन चैतन्य महाप्रभु के बारे में कृष्णदास कविराज करते हैं। और वास्तव में दृढ़ भक्ति का मतलब ही क्या है कि उस भक्त का जिस भक्त के जो सारे कार्यकलाप हैं वो गुरु और गौरांग की प्रसन्नता के लिए होने चाहिए। हम इस जगत में हर रोज जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे सेवाएं करते हैं या जो मर्जी करते हैं, उसके पीछे सबसे पहले हम देखते हैं कि मेरी प्रसन्नता कहाँ छुपी हुई है। लेकिन वास्तव में एक भक्त का जीवन, एक शिष्य का जीवन गुरु और गौरांग की प्रसन्नता के लिए है। कई बार हम सोचते हैं जैसे गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज ने कहा कि कई सारे चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, कई सारे चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स हैं, वो जोर जोर से अनाउंसमेंट करते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, क्या बोलेंगे, गौरार आमी, मैं किसका हूं, चैतन्य महाप्रभु का हूं, मैं गौरांग महाप्रभु का हूं, या हरि बोल करते रहेंगे। हम मुख्य बोलने ना ही चले, केवल गौरांग महाप्रभु का मैं हूं, ये अपने मुख से बोलने से चलेगा नहीं। हाँ, तो उसके लिए क्या करना होगा, गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज कहते हैं गौरार आचार गौरार विचार लोयले फल फले। हाँ, कि वास्तव में चैतन्य महाप्रभु के जो आचार हैं, आचरण हैं और उनका जो विचार है, उनकी जो शिक्षा है, उसको अपने जीवन में धारण करना होगा, तभी वास्तव में चैतन्य महाप्रभु को कोई व्यक्ति समझ सकता है और तभी उनके चरण कमलों का अनुसरण कर सकता है। अन्यथा केवल मैं गौरांग महाप्रभु का हूँ, मैं गौरांग महाप्रभु का हूँ, ऐसा बोलने से चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है उसकी प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, तो वो आगे कहते हैं लोक देखाइया गोरा भज तिलक मात्र धरे गोपने ते अत्याचार गोरा धरे छुरे। वास्तव में लोगों को दिखाने के लिए कि मैं कितना महान भक्त हूँ, कितना चैतन्य महाप्रभु से प्रेम रखता हूँ, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, तिलक मात्र धरे, तिलक आदि जो वेशभूषा है, भक्त की जो वेशभूषा है उसको धारण कर रहा हूँ। लेकिन हम सारे जगत को धोखा दे सकते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को हम धोखा नहीं दे सकते। जैसे गौर गोविंद महाराज एक स्टोरी बताते थे, वो कहते थे बक धार्मिक बिराड़े वैष्णव, कहते कि एक बार जो बक है, बक मीन्स जो बगुला है, बगुला भी एक बार उसने सोचा अरे मैं रोज इतने सुंदर वेशभूषा धारण करता हूँ, शुभ्र वस्त्र है जिनमें एक भी दाग नहीं है, बाहरी रूप से देखा जाए बगुले के शरीर में एक भी दाग नहीं है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, तो ऐसा बगुला, लेकिन जब वो जल में खड़ा होता है एक पाव में और ध्यान लगाता है, ऐसे लगता है कि कितना अटेंटिव चैंटिंग कर रहा है, लेकिन वास्तव में उसका ध्यान किस पर है, मछली के ऊपर, और ऐसा समय बिताता है, देखता रहता है ध्यान में मछलियों का स्मरण, मछली का नाम रूप गुण और लीला, उसमें वो मग्न रहता है। फिर उसने सोचा अरे इतना समय बिताने से क्या लाभ, इतना कष्ट उठाने से क्या लाभ, बहुत सरल है भोजन प्राप्त करना, क्या करना होगा, केवल तिलक मात्र धरे, तिलक धारण करो, कंठी आदि रखो, बेड बैग धारण करो, वैष्णव की वेशभूषा धारण करो, हम भोजन आदि तो इजीली सरलता से मेरे जीवन में प्राप्त हो सकता है। तो कहते हैं कि ऐसा जो बक था वो धार्मिक बन गया, ऐसा बगुला भक्त बन गया, वैष्णव बन गया। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा आमी तो वैष्णव, मैं कौन हूं, वैष्णव हूं, ये मेरी पोजीशन है, ये मेरी उपाधि है। तो ऐसे बगुला जब वैष्णव बन गया तो उन्होंने देखा, और उन्होंने वैष्णव बना ही नहीं, बल्कि बहुत केयरफुल था कि जब पानी भी पियो तो उसने अपने चोंच में ये लगाया, जाले लगाया कि गलती से कोई मछली अंदर ना चले जाए। और माँ बिल्कुल ध्यान लगा के अपना हरि नाम ले रहा है, तिलक धारण किया हुआ है, और सारे मछलियां जब उसके चरणों के आसपास इर्द उधर इर्द गिर्द भ्रमण करती थी, घूमती थी, वो देखते थे अरे अभी तो ये बिल्कुल करुणा का सागर हो गया है, हमारी तरफ देखते भी नहीं है, अभी तो हम निर्भय हो गए हैं। तो जैसे कोई उनको देख नहीं रहा है, उस समय चुपके से अपनी चोंच अंदर डालता था, जाली को हटा के मछली को खा लेता था, फिर से जाली लगाता था और फिर से क्या करता था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा बक धर्मी, अभी ये बक तो धार्मिक हो गया, लेकिन वहां वो कहते हैं बिराड़ी वैष्णव, उड़िया में बिराड़ी मीन्स जो बिल्ली है, हाँ, तो बिल्ली भी वैष्णव बन गई। बिल्ली ने भी अपना हेड शेव किया, लंबी छोटी रख ली, शिखा, कंठी माला धारण की, फैंसी बेड बैग भी रखी और बहुत सारी चीजें रखी। अभी बिल्ली को लगा कितना टफ है अपना भोजन प्राप्त करना, चूहे बहुत सरलता से अपने हाथ में नहीं आते, मुंह में नहीं आते, कि जैसे प्रभुपाद कहते सिंह राजा भी हो जाए तो कोई भोजन उसके मुंह में नहीं आएगा, उसको जाना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा भोजन के लिए। तो बिल्ली ने सोचा क्या किया जाए, सरलता से सारे जो सुविधाएं हैं उसको अर्जन करने के लिए, सरलता से चूहों को अपना फिश या भोजन बनाने के लिए, तो इस बिल्ली ने भी वैष्णव वेश धारण किया, वैष्णव वेश सुंदरता से धारण किया, और वो भी खड़ी हो गई, बैठ गई चैंटिंग करते हुए, गले में तिलक, गले में माला, तिलक आदि धारण करके, और फिर वो सोचने लगे अभी तो मैं भक्त बन गई हूँ। अभी वो निरंतर हरिनाम करती थी, बिल्कुल नो अटेंटिव चैंटिंग, और फिर चूहों ने देखा ये क्या हो गया है, चूहे फिर इर्द उर्द घूमने लगे, देखा कि अभी तो ये हमें बिल्कुल तंग नहीं करती है, हमारा पीछा नहीं करती है, हम निर्भय हो गए हैं, फ्रीडम, हमने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। तो लेकिन उनको पता नहीं है कि स्वतंत्रता कुछ क्षणों के लिए है। तो ऐसे बिल्ली को जब भूख लग जाते थे तो तुरंत उसने भी जाली लगाई थी, और वो बिल्कुल प्रसाद के अलावा कुछ नहीं ग्रहण करती थी, लेकिन जैसे जैसे मौका मिलता था, कोई डिवोटी साथ नहीं है तो फिर प्रसाद के अलावा बाकी चीजें ग्रहण करती थी, तुरंत पकड़ लेती थी चूहे को, मस्त खा लेती थी और फिर से नाम भजन। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज कहते हैं, लोक देखा या गोरा भजा तिलक मात्र धरे, लोगों को देखने के लिए दिखाने के लिए वास्तव में मैं गौरांग महाप्रभु का भजन कर रहा हूं, गोपने ते अत्याचार गोरा धरे छोरी, लेकिन गुप्त गोपनीय मेरा आचरण क्या है, मैं वास्तव में चैतन्य महाप्रभु का जो आचार है, चैतन्य महाप्रभु का जो विचार है उसको स्वीकार नहीं कर रहा हूं। तो चैतन्य महाप्रभु का जो आचरण है, चैतन्य महाप्रभु का जो विचार है वो क्या है, ये चैतन्य चरितामृत है। तो चैतन्य चरितामृत को चैतन्य चरितामृत शास्त्र या आचार्य कहते हैं कि कृष्ण लीला का अपेंडिक्स है, कृष्ण लीला का जो परिशिष्ट होता है किसी बुक के पीछे, एक्स्ट्रा जो चीजें रह जाती है कंपाइल करते समय तो उसको फिर एंड में डालते हैं या एक्स्ट्रा चीजें। तो उसी प्रकार से श्री कृष्ण लीला में भगवान कृष्ण द्वारका द्वापर युग में अपनी लीलाओं का समापन करते हैं और इस जगत से वापस जाने के बाद फिर भगवान सोचते हैं अरे कुछ चीज रह गई है, समथिंग इज मिसिंग, कुछ तो मिसिंग है, तो फिर भगवान फिर से आते हैं। सही कृष्ण वही कृष्ण अवतरिला नदियां, वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में नवद्वीप में अवतरित होते हैं। तो इस प्रकार से गौरांग महाप्रभु की जो लीलाएं हैं और कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो वास्तव में अभिन्न है, क्योंकि कृष्ण की लीलाओं में दो पर्सनैलिटीज हैं, श्रीमती राधिका है और ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, लेकिन वही दोनों का जब मिलित विग्रह होता है, मिलित रूप में अपने जो बची हुई जो इच्छाएं हैं, भगवान की जो दिव्य डिजायर है उसकी पूर्ति करने के लिए वही चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य इस जगत में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और उनमें उन लीलाओं में और कृष्ण लीलाओं में कोई अंतर नहीं है। लेकिन एक अंतर है, क्या अंतर है कि चैतन्य महाप्रभु की लीला बहुत ही अधिक औदार्यमय है, बहुत ही अधिक कृपामय है, बहुत ही अधिक उदारमय है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि वही है चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण है। नंद सुत बलि जारे भागवते गाय श्री कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई, जिनको श्रीमद् भागवतम में नंद महाराज के पुत्र के रूप में वर्णित किया गया है वही कृष्ण कलियुगा में चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। और वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं यही गौर चंद्र जबे जन्मिला गोकुले शिशु संगे ग्रह ग्रह क्रीड़ा करे बुले, कि यही गौर चंद्र जब उन्होंने गोकुल में जन्म ग्रहण किया था उन्होंने अपने कई सारे सखाओं के संग में बहुत उत्कृष्ट जो लीलाएं हैं उनका प्राकट्य किया था। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं उनका श्रवण करना, उनका मनन करना या उनका वर्णन करना एक भक्त के लिए परम आवश्यक है। तो जनरली बाहर के लोगों को तो अब कहोगे कि गौर कथा हो रही है तो उनके लिए तो नया कुछ है, उनको पता है भागवत कथा या गीता कथा या कुछ और कथाएं पता है। लेकिन जब गौर कथा कहते हैं तो उनको समझ से परे है, उनको लगता है कि ये कुछ नया कुछ मनगढ़ंत चीजों को ये लोग प्रचार कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में जो गौर कथा है जिसको श्रवण करने के लिए ब्रह्मा शिव आदि लालायित रहते हैं, जब हम नवद्वीप की परिक्रमा में जाते हैं तो मध्य द्वीप में वो स्थान आता है जहाँ गोमती नदी है, नैमिषारण्य का वो स्थान है जहाँ कलयुग की शुरुआत में जब कलयुग बहुत अधिक प्रबल हो रहा था तो शौनक आदि ऋषि उस स्थान में एकत्रित हुए थे और सूत गोस्वामी को निवेदन कर रहे थे और सूत गोस्वामी से गौर भागवतम को सुन रहे थे। गौरांग महाप्रभु की लीलाओं को वो सुनने के लिए तत्पर थे। जब पता चला, इसको पता चला, शिवजी को पता चला कि चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों का, चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का वर्णन होने जा रहा है नवद्वीप में, मध्य द्वीप में, तो शिवजी ने कहा मुझे जल्दी पहुंचना है क्लास में, क्लास शुरू होने से पहले पहुंचना है। लेकिन उन्होंने अपने व्हीकल की तरफ देखा, गाड़ी की तरफ देखा, उनका गाड़ी क्या है, बैल है, नंदी बैल। उन्होंने कहा इसको लेके जाऊंगा तो सीधा प्रसादम के समय पहुंचूंगा, पहले नहीं पहुंचूंगा। तो उन्होंने सोचा नहीं नहीं, इतने ईगर थे। और वास्तव में शिवजी का कुछ और कार्य नहीं है, हम महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे, भगवान शिव और पार्वती नित्य रूप से सदैव कृष्ण कथा या गौर कथा में निमग्न रहते हैं। पुराणों में वर्णन आता है कि उनकी जो पत्नी है पार्वती, इनके संग में वो सदा कृष्ण कथा या चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को श्रवण करने के लिए निमग्न रहते थे। तो शिवजी को कोई सुध-बुध नहीं होती थी कि अभी घर चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, बहुत सारी सुविधाएं चाहिए, उसका विचार वो कभी भी नहीं करते थे। वो सोचते थे कि इन चीजों को एकत्रित करना, इनको मेंटेन करना ये समय का अपव्यय है। चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण का जो श्रवण कीर्तन है वो समय का वास्तव में सदुपयोग है या उचित इस्तेमाल है। तो निरंतर अपनी जो भार्या है पार्वती आदि के साथ कृष्ण कथा में मग्न रहती है, मग्न रहते हैं। लेकिन एक बार पार्वती ने कंप्लेंट की, उन्होंने कहा देखो आपके साथ तो मैं रहती हूँ, ठीक है ठंड में पेड़ के नीचे तो आप बिठाते हो, कृष्ण कथा सुनाते जाते हो, लेकिन वो केवल सुनती नहीं बल्कि क्या करती है, प्रश्न भी पूछती है, उन्नत प्रश्न। तो एक बार वो कहती है कि अभी ठंड के दिनों में ठीक है मैं सुन रही हूँ पेड़ के नीचे, गर्मियों में भी अच्छा है वृक्ष के नीचे महाप्रभु या श्री कृष्ण का जो दिव्य कार्यकलाप है उनको मैं श्रवण कर रही हूँ, लेकिन मेरी बारिश के दिन आ रहे हैं ना, बारिश के दिनों में कुछ तो अरेंज करो, कुटिया बनाओ, आजकल कुटिया नहीं कोठी बनाओ या फिर कुछ और बनाओ, हम उसके नीचे बैठकर श्रवण करेंगे। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने अपनी पत्नी का, जैसे बारिश को देखा कि बारिश आने वाली है, पार्वती का हाथ पकड़ा और उसको लेकर कहाँ चले गए, बादलों के ऊपर, और अपना जो कृष्ण कथा है उसको कंटिन्यू करने लगे। तो पुराण कहते हैं जब ये शिव जी ने कार्य किया तो शिव जी का नया नाम पड़ा जिम केतु, जो बादलों के ऊपर जाकर कृष्ण कथा या महाप्रभु का वर्णन करने में व्यत्यय नहीं आना चाहिए श्रवण और कीर्तन में। और हमारी स्थिति क्या है कि हम प्रयास करते हैं कैसे व्यत्यय आ जाए, फोन का इंतजार करते हैं, अरे एसएमएस नहीं आया, 8:30 हो गए, 9:15 हो गए, क्लास के बीच में इंतजार करते रहते हैं। लेकिन वहां ये जो बड़े बड़े देवी देवता आदि है, शिव जी है, ब्रह्मा है, ये सब लोग भगवान के जो कार्यकलाप है उनको श्रवण करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे सुनिले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य है। उन्होंने जब चैतन्य भागवत पर अपनी टीका लिखी तो उन्होंने ग्लोरिफिकेशन लिखा, जिसमें वो कहते हैं सुनिले चैतन्य कथा, चैतन्य महापारु प्रभु के बारे में श्रवण करने मात्र से जो बद्ध जीव है उसके हृदय में भगवत भक्ति स्थापित हो जाती है, न चाहते हुए भी उसका हृदय भगवत भक्ति से अप्लावित हो जाता है। ये चैतन्य महाप्रभु के चरित्र की विशेषता है, चैतन्य महाप्रभु के चरित्र की खासियत है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए अपने आध्यात्मिक जीवन में कि चैतन्य महाप्रभु के जो कार्यकलाप हैं उनको हम श्रवण करें, और चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण से अभिन्न है, और इस अध्याय में हम यहाँ पढ़ रहे हैं कई दिनों से, चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार करने का जो लीला है वो कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु विशेष पर्सनैलिटी है। चैतन्य महाप्रभु गए जगन्नाथपुरी, उन्होंने प्रचार करना तो एक व्यक्ति को प्रचार किया और चले गए, एक को भक्त बनाया, उसने सारे जगन्नाथपुरी के राजा, उसके मंत्री, जगन्नाथ के जो सेवक है सब भक्त बन गए। महाप्रभु ने एक एक महत्वपूर्ण जीवों को टच किया और उनको टच करने मात्र से उन्होंने सारे जो जगत है उसको कृष्ण प्रेम से या कृष्ण भावना से अप्लावित किया। तो इस प्रकार से महाप्रभु का चरित्र बहुत दिव्य है। प्रभुपाद को एक बार एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद हमने अभी नया नया मंदिर बनाया है और हम सोच रहे हैं स्वीट शॉप भी खोले जिसमें स्वीट्स का वितरण हो। प्रभुपाद को पूछते बंगाली स्वीट्स बहुत अच्छे होते हैं, सेल बहुत अच्छा है उनका, तो हम क्या बंगाली स्वीट्स रख सकते हैं? प्रभुपाद ने कहा एक बंगाली स्वीट रखो, वो क्या है, चैतन्य चरितामृत, और उसका वितरण करते रहो, सबको पिलाते रहो। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का ये जो चरित्र है जिसका श्रवण करने के लिए हमारे जो आचार्य हैं वह हमेशा तत्पर रहते थे। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका जा रहे थे तो उन्होंने अपने साथ चैतन्य चरितामृत का कॉपी ले गए थे। जलदूत में जब उनको लगा एकाकी हमार नाही पाए बल, मैं एकाकी हूँ अकेला हूँ, तो उन्होंने जलदूत पर चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को खोला और चैतन्य चरितामृत के जो महाप्रभु का चरित्र है उसको पढ़ना शुरू किया, उन प्यारों का उच्चारण करना शुरू किया, तो उन्होंने उनको बहुत ही अधिक दिव्य आनंद की अनुभूति महसूस होने लगी। तो ऐसा महाप्रभु का जो चरित्र है जिसका वर्णन कृष्णदास कविराज ने बहुत ही विस्तार रूप से चैतन्य चरितामृत में किया है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी पहुंचे तो वो सार्वभौम भट्टाचार्य को मिलते हैं, या सार्वभौम भट्टाचार्य वो अपने घर ले जाते हैं उनको जगन्नाथ दर्शन के बाद, मूर्छित होने के बाद। और सार्वभौम भट्टाचार्य कहते कि आप तो नवयुवक हो और नवयुवक सन्यासी हो, आप माया से आपको भय है, माया से आपको बचाने के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, वेदांत का श्रवण कराना चाहता हूँ। तो महाप्रभु कहते हैं आप वास्तव में मेरे पिता के समान हैं, आप मेरे संरक्षक हैं, मेरी रक्षा करने वाले हैं, मैं आपसे वेदांत का श्रवण करने के लिए तत्पर हूं। तो फिर एक दिन चैतन्य महाप्रभु को लेकर सार्वम भट्टाचार्य जगन्नाथ मंदिर में जाते हैं हाथ पकड़कर, और वहां उनको बिठाकर, महाप्रभु को बिठाकर सार्वम भट्टाचार्य वेदांत का श्रवण कराते हैं, और महाप्रभु कोई कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, श्रवण करते जा रहे हैं, श्रवण करते जा रहे हैं। और उन्होंने पूछा कि आपको सब समझ में आ रहे हैं, कुछ प्रश्न नहीं पूछ रहे हो? उन्होंने कहा सब कुछ समझ में आ रहा है, हाँ, लेकिन आप जो बोल रहे हो ना वो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो ये ब्रह्म सूत्र की जो सूत्रास है, वेदांत सूत्र, वो सब मुझे हाँ समझ में आ रहे हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को कहते हैं कि वास्तव में ये जो वेदांत सूत्र है उसकी और व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। आपने क्या किया, वेदांत सूत्र का जो मूल भाष्य है या मूल उसका अर्थ है उसको ढक दिया, जिस प्रकार से बादल सूर्य को ढक देते हैं, उस प्रकार से आपने जो मुख्य वृत्ति है, मुख्य उसका वर्णन है, उसको छोड़ उसको ढक दिया है, और आपने मनगढ़ंत जो भाष्य है वो प्रस्तुत कर रहे हो। इसी कारण से मुझे ये जो आपकी टीका है या आपकी जो व्याख्या है वो समझ में नहीं आ रही है। हाँ, फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वास्तव में कि जो सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है वो कौन सा है, प्रमाणेन मध्य श्रुति प्रमाण प्रधान, सारे जो प्रमाण है उनमें श्रुति प्रधान, श्रुति प्रमाण प्रधान है। जैसे हम सुनते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण, तो शब्द प्रमाण वास्तव में जिसके द्वारा ये तीन साधन है या तीन प्रकार है जिसके द्वारा हम ज्ञान अर्जन करते हैं, लेकिन इनमें जो परिपूर्ण है, सर्वोत्कृष्ट है, वो क्या है, शब्द प्रमाण है। प्रभुपाद कहा करते थे कि हमें अपने पिता को जानना है, हाँ, तो हमें अधिकारी के रूप में अपनी माता को स्वीकार करना पड़ेगा। तो श्रुति का मतलब ही है श्रवणम के द्वारा, लेकिन किससे श्रवण करना, जो अधिकारी है, श्रुति प्रमाण। श्रुति प्रमाण जो वैदिक शास्त्र है वो तीन भागों में विभाजित किए गए हैं, हाँ, एक है श्रुति, एक है स्मृति और एक है न्याय। तो जो श्रुति है जिसको हम ज्ञान, उस ज्ञान को समझते हैं श्रवणम के द्वारा, वेद आदि है। और ये जो श्रुति है वो हमें ये सिखाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या करें, और जो स्मृति है वो हमें सिखाता है कि कैसे करना चाहिए, और जो न्याय शास्त्र है वो हमें सिखाता है कि क्यों करना चाहिए। तो इस प्रकार से हाँ सारे जो वैदिक लिटरेचर है वो ये तीन भागों में विभाजित किया है, और इसलिए ये जो वैदिक साहित्य है, शास्त्र है, हाँ, वो भौतिक वाणी नहीं है, वो भगवान की वाणी है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि शास्त्र अपौरुषेय ज्ञान है, हाँ, भगवान की साक्षात वाणी है। तो जिसको जो वास्तव में उचित प्रमाण है या मूल प्रमाण है जिसके द्वारा हम परम भगवान को समझ सकते हैं और अपनी स्थिति को जान सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि एक ही पंथ काम करता है, श्रौत पंथा, हाँ, सुनने के द्वारा ही ये जो पंथ है एक प्रकार से आगे बढ़ता है। तो इसलिए कलयुग में भी हम देखते हैं कि जो शास्त्र है वो कितने परिपूर्ण है। शास्त्रों में जैसे यहाँ कहा है कि शास्त्रों में दोनों चीजों का वर्णन किया है। शास्त्र कहते हैं कि किसी जीव की जो हड्डियां हैं, मल मूत्र आदि है वो अपवित्र है, लेकिन वही शास्त्र ये वर्णन करते हैं, हाँ, कि लेकिन विशेष रूप से जो गाय है और जो शंख है वो परम पवित्र है। तो शास्त्रों की जो वाणी है वो सही है, या शास्त्रों की जो वाणी है वो पूर्ण है। जैसे श्रीमद् भागवतम में कलयुग के लक्षणों का वर्णन आता है, या अलग अलग पुराणों में भी कलयुग के लक्षणों का वर्णन करते हैं, हाँ, अलग अलग जो आचार्य हैं या ऋषि मुनि हैं या विशेष रूप से व्यास देव हैं। तो उससे हम देखते हैं कि हजारों साल पहले श्रीमद् भागवतम में भगवान बुद्ध के बारे में बोला है, हाँ, तो वो सब चीजें, हाँ, वो जो भविष्यवाणी की है भागवतम में चाणक्य के बारे में, हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में या फिर बुद्ध आदि के बारे में, वो सारी चीजें इतने सालों के बाद घटित हो रही हैं। तो ये उचित शब्द प्रमाण है, शास्त्र जो भी बोलते हैं, हाँ, वो प्रमुख है,
इवन जो कलयुग के लक्षणों का वर्णन श्रीमद् भागवतम में किया है, तो वो सारी चीजें हम इस कलयुग में देखते हैं। शास्त्र कहते हैं कि पुरुषार्पम बहु श्रीकम स्वबाहुल्यम गवाक्षयम, कि कलयुगा में पुरुषों की संख्या कम होगी और स्त्रियों की संख्या बढ़ेगी। स्वबाहुल्य कुत्तों की संख्या बढ़ेगी और गौओं की संख्या कम हो जाएगी। तो ये पहले से ही शास्त्र हमारे वर्णित कर रहे हैं। तो ये शास्त्रों में सारे चीजों का जो वर्णन हम प्रदान किया है वो यहाँ सही है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु धीरे धीरे ये जो प्रमाण है, शब्द प्रमाण है, उसकी बहुत ही उचित रूप से, बहुत स्ट्रांग रूप से शब्द प्रमाण को स्थापित करते हैं। चैतन्य महाप्रभु सारव भट्टाचार्य के जो बात है उनको श्रवण करने के ऊपर। तो वास्तव में इसी कारण से हमारे आचार्यगण ग्रंथों का निर्माण करते हैं, ग्रंथों को प्रदान करते हैं, अन्यथा ये शब्द प्रमाण लुप्त हो जाएगा, फिर बाकी अनुमान और प्रत्यक्ष प्रमाण ही बचा रहेगा, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का जो परम लक्ष्य है उसको प्राप्त नहीं कर पाएगा और उसके प्रति दिग्भ्रमित रह जाएगा। इसलिए श्रील प्रभुपाल ने बहुत अधिक जोर दिया अपने ग्रंथों के वितरण में, ग्रंथों के प्रिंटिंग आदि में, और वही उसी प्रकार की भावना भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने भी प्रदान की। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज तो इतने कठोर थे, उन्होंने कहा कि ये जो मंदिर की जो मार्बल है उसको बेचा जाए, लेकिन ग्रंथों का निर्माण होना या छपाई होना बहुत आवश्यक है। एक व्यक्ति ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को पूछा कि आपने जो आपका गौड़िया मिशन का जो लोगो है उसमें तो सारी इंडियन जो चिन्ह है वो लगाए हुए हैं, वैदिक चीजें लगाई हुई हैं, लेकिन उसमें एक विदेशी चीज भी आपने रखी है। उन्होंने कहा कौन सी है? कहते प्रिंटिंग प्रेस, कहते विदेशी है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा जो भी कृष्ण की या चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में सेवा के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो ना देशी है ना विदेशी है, वो अप्राकृत है, वो इस जगत की नहीं है, वो पूजनीय है। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भी कहा करते थे उनका जो चैतन्य गौड़िया मठ है उसमें अल्टर के सामने ही प्रिंटिंग प्रेस बिल्कुल। तो कहते करताल मृदंग की आवाज से जो गंधर्वी का गिरिधारी है वो आनंदित हो उठते हैं जब प्रिंटिंग प्रेस की आवाज उनको सुनाई देती है, वो गदगद हो जाते भगवान। तो इस प्रकार से शब्द प्रमाण की स्थापना या शब्द प्रमाण को आगे पहुंचाने के लिए वास्तव में इस परंपरा के जो आचार्य हैं चैतन्य महाप्रभु से लेकर श्रील प्रभुपाद या वर्तमान आचार्यों तक, इन सब ने यही कार्य किया है। महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए तो उन्होंने दो ग्रंथ अपने साथ लेके आए, आदिकेश्वर मंदिर से ब्रह्म संहिता, कृष्णा नदी के किनारे ब्राह्मणों से कृष्ण करणामृत को लेके आते हैं और सारे भक्तों को कहते हैं अब कॉपी करो, रामानंद राय को सबसे प्रथम देते हैं, सब भक्त अपने कंठ में धारण करते हैं इन ग्रंथों को। इसलिए इस प्रमाण को वास्तव में हमें जागृत रखना है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि केवल वितरण ही इनफ नहीं है, इन ग्रंथों का अध्ययन भी बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद कहते थे कि मेरे भक्तों को जितनी मात्रा में मेरे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए उतनी मात्रा में मेरे ग्रंथ पढ़े नहीं जाते, ये मेरी कंप्लेंट है। प्रभुपाद एक बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रभुपाद एक बार कार से जा रहे थे तो एक सिग्नल में उनकी कार रुकी तो और कार बंद थी, ड्राइवर का विंडो थोड़ा सा खुला था, तो उसकी एक माता जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी वहाँ रास्ते में, उन्होंने बुक अंदर दे दी, ड्राइवर ने ले ली, पीछे पकड़ा दी, और पीछे तो कौन बैठे थे? श्रील प्रभुपाद। तो प्रभुपाद ने वो बुक ले ली, उसके ऊपर साइन किया और उसको वापस कर दिया। वापस किया वो ड्राइवर ने उस माता जी के हाथ में पकड़ा और गाड़ी वहां से चल गई। तो माता जी ने खोला और देखा अरे तो प्रभुपाद बैठे थे अंदर और उन्होंने साइन किया और लिखा क्या तुमने ये बुक पढ़ी है। उसी समय रोने लगे कि मैं कई महीनों से, और वो बुक था उपदेश अमृत, वो बुक था, वो रोने लगे कि मैं इसका वितरण कब से कर रही हूँ, साल बीत गए लेकिन छोटी सी किताब मैंने इसको अध्ययन नहीं किया, मैंने पढ़ा नहीं। तो ये दोनों चीजें आवश्यक है।
कि अपने जीवन में भी इस शब्द प्रमाण को आप धारण करें। यदि हम गंभीरता से चैतन्य महाप्रभु और जो आचार्य ने यशील प्रभुपाद आदि ने दिए हुए जो व्रत हैं उनका अध्ययन करते हैं और साथ ही साथ इस ज्ञान का वितरण करते हैं, तो निश्चित रूप से हम चैतन्य महाप्रभु या गुरु और गौराम को प्रसन्न करते हैं, जिसके द्वारा हमारी जो शुद्धि है वो निश्चित है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। गृहस्थ चैतन्य चिंतामृत की, पतित पावन श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निराय गौर प्रेमानंदे।